समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं शाम के 4:30, यानी वक्त हो गया है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे उनसे क्या कुछ है खास उनके पास हमारे लिए, और इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहती ही हमारी नजर, तो खेल के मैदान में भी चलेंगे और हासिल करेंगे जानकारी वहां की, और फिर हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि दोस्तों या जन्मदिन। और दोस्तों, परिक्रमा के संघ में मैं मुनीष शर्मा हूं और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी आपकी जानी पहचानी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार मुनीष। हेलो, नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। यस, टुडे मी शगुन चोपड़ा एंड मुनीष विद मी टुडे, वी आर ऑल सेट एंड रेडी टू गिव यू द हेडलाइंस, देन वी हैव आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, आवर रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स एंड देयर विल बी ट्रिब्यूट्स एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। सो कीप लिसनिंग टू अस एंड बी श्योर दैट यू आर हियर फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
Yes, so for first headline, yes, Shagun. Yeah.
Both Houses of Parliament take up discussion on motion of thanks to President's address on first day of budget session. Lok Sabha adjourned till tomorrow. Munish.
जी हाँ, और धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के भविष्य के लिए एक प्रेरणादायक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।
The US-India Strategic Partnership Forum welcomes Union Budget 2026-27, calling it progressive and investment-friendly.
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्योर नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए विशेष न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश दिया है।
Low visibility due to fog in national capital disrupts movement of several flights and trains.
और एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 दिल्ली में हो गई है दोस्तों शुरू।
सो यस, वी विल बिगिन आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। टुडे वी विल टॉक अबाउट बजट, ऑफ कोर्स बजट 2026-27। इट वाज प्रेजेंटेड यस्टरडे बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, एंड दिस गिव्स अ स्ट्रांग पुश टू मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर and job creation while proposing a simpler tax and customs regime. Today we will also elaborate on orange economy. And in her 9th consecutive budget in Parliament, Ms. Sitaraman laid out a multi-pronged strategy to sustain growth amid global uncertainty. This includes expanding domestic electronics and semiconductor capabilities, de-risking infrastructure projects, skilling India's youth for emerging technologies and easing compliance for taxpayers for importers.
भारत के एजुकेशन और स्किल्स इकोसिस्टम के लिए एक बदलाव लाने वाला रोड मैप पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने और देश के क्रिएटिव इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए खास पहलों के बारे में बताया। ऑरेंज इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के उस हिस्से को कहते हैं दोस्तों जो क्रिएटिविटी, कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से चलता है, जहां वैल्यू मुख्य रूप से फिजिकल सामान के बजाय आइडिया यानी विचार, ज्ञान, कलात्मक अभिव्यक्ति और कल्चरल कंटेंट से आती है।
राइट मुनीश, कंटेंट क्रिएशन एंड दिस क्रिएटिव इंडस्ट्री दे गेट अ बूस्ट थ्रू AVGC लैब्स एंड दिस वाज प्रेजेंटेड इन यूनियन बजट 2026-27। वेल, इन स्कूल्स, इन कॉलेजेस एंड सपोर्ट फॉर एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स and all this constitutes orange economy and new institutional capacity for design and hospitality. So on the growth of country's animation, visual effects, gaming and comics, AVGC, let's make it easier for you, AVGC sector, this requires 2 million professionals by the end of year 2030. Finance Minister Nirmala Sitharaman said the government will provide support to the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC Content Creator Labs in 15,000 secondary schools, 500 colleges. And the minister also announced that a new National Institute of Design, this will be established to boost design education and development in the eastern region of India.
Orange Economy, India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC Content Creator Labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges.
ये वो पहल है दोस्तों जो भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाने, भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को मजबूत करने और देश भर के स्टूडेंट्स के लिए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो मैसेज के जरिए केंद्रीय बजट 2026 पर अपनी बात रखी और इस मौके पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा ये बजट ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट अपार अवसरों का हाईवे है जो वर्तमान के सपनों को पूरा करता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को मजबूत करता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि ये बजट 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की ऊंची उड़ान का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर भारत आज सवार है उसे इस बजट से नई ऊर्जा और एक नई गति मिलेगी और साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किए गए जबरदस्त सुधार भारत के महत्वाकांक्षी साहसी और प्रतिभाशाली युवाओं को ऊंची उड़ान भरने के लिए एक खुला आसमान देते हैं।
Also, Munish, Prime Minister Narendra Modi reiterated Union Finance Minister Nirmala Sitharaman's statement that this is a youth power budget. So he emphasized that the provisions made in the budget will prepare leaders, innovators and creators across different sectors.
ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है।
So he noted that through the establishment of medical hubs, allied health professionals, promotion of the orange economy, including audiovisuals, encouragement of gaming, tourism, and the Khelo India mission, new opportunities will open for the youth.
यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है, और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट की घोषणाओं पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये युवाओं की शक्ति और महिलाओं की ताकत से प्रेरित कर्तव्य आधारित बजट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेव्स के जरिए भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया है और आगे उन्होंने ये भी कहा कि आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर स्थापित आईआईसीटी मुंबई क्रिएटर्स लैब के जरिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों से जुड़ेगा जिससे 20 लाख और नई नौकरियां सृजित होंगी।
हम सब जानते हैं कि आज क्रिएटर्स इकोनॉमी बहुत बड़ी एक इकोनॉमी है जिसमें नौजवान युवा हर तरीके से नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी कहानी को, अपने आसपास की न्यूज को, करंट अफेयर्स को, सबको एक नए तरीके से बताते हैं और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान भी है। इस इकोनॉमी को जिसमें ऑडियो विजुअल गेमिंग और एनिमेशन इन सब का कैसे डेवलपमेंट हो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑरेंज इकोनॉमी की जो एक संकल्पना की है इसमें पिछले वर्ष वेव्स का आयोजन किया गया था जो कि दुनिया भर के लिए एक नया बेंचमार्क बना है। अब उसके दौरान स्थापित की गई आईआईसीटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज उसको 15,000 हाई स्कूल और 500 कॉलेजेस के साथ क्रिएटर्स लैब के माध्यम से जोड़ा जाएगा और उससे भविष्य में 20 लाख नया रोजगार उत्पन्न होगा। ये बजट युवा शक्ति को समर्पित है, युवा शक्ति से प्रेरित है।
Well, right. And the economic survey, focusing on the economic survey, it also noted that India's media and entertainment sector has emerged as a major pillar of the services economy, covering audiovisual production, broadcasting, digital content, gaming, animation, advertising, as well as live entertainment.
और दोस्तों पिछले एक दशक में ये सेक्टर तेजी से डिजिटल और प्लेटफॉर्म बेस्ड डिलीवरी की ओर बढ़ा है, जिससे रेवेन्यू मॉडल, रोजगार और वैल्यू चेन में बदलाव आया है। 2024 में इसका अनुमानित आकार लगभग 2.5 ट्रिलियन रुपए है और इसकी ग्रोथ बढ़ती इनकम, इंटरनेट की पहुंच, ओटीटी के विस्तार और एआई पर आधारित इनोवेशन से हो रही है।
सो ओवरऑल मुनीश, द यूनियन बजट 2026-27 इट सेट्स अ क्लियर एंड एम्बिशियस डायरेक्शन फॉर इंडियाज ग्रोथ जर्नी, बैलेंसिंग इकोनॉमिक रेजिलियंस विद फ्यूचर रेडी रिफॉर्म्स। सो बाय स्ट्रेंथनिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंप्लीफाइंग टैक्सेशन एंड ऑल्सो मेकिंग bold investments in education, skills and the orange economy, sometimes some people also call it creative economy. So the budget places India's youth and creative potential at the center of national development.
Bilkul Shagun, aur yahi wajah hai ki innovation, rozgar paida karne aur global competitiveness par zor dete hue ye budget 2047 tak Bharat ko ek viksit desh banane ki disha mein aage badhne ke liye ek mazboot neev rakhta hai. और आइए अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि क्या कुछ है उनके पास विशेष।
सो लेट्स फर्स्ट टेल आवर लिसनर्स अबाउट माय भारत बजट क्वेस्ट 2026। यूनियन यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया टुडे लॉन्च्ड दिस माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ द विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। सो द नेशन वाइड यूथ सेंट्रिक इनिशिएटिव which will commence tomorrow. It is aimed at enhancing the understanding of the union budget by the youth of the country, which is really important, making budgetary provisions more accessible, relatable and citizen-centric. And this also seeks to connect the budget with everyday life of citizens by engaging youth from colleges, institutions, coaching centres as well and through a structured and participatory framework. So launching the initiative, the minister said, with My Bharat budget quest, the government focuses to empower young voices. He also said, Dr. Mansukh Mandaviya also said, that the first round of the competition will be open to the youth registered on My Bharat portal till the 17th of this month.
दोस्तों विगत 24 से 26 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित हुआ था, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहे और इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनपद एक व्यंजन ODOC योजना और सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना का भी शुभारंभ किया।
विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर आयोजित समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश न केवल देश की आत्मा है बल्कि विकसित भारत का विकास इंजन भी बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो खाद्यान्न भंडार में 20% का योगदान देती है। श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का फूड बास्केट भी बन चुका है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक जिला एक व्यंजन योजना उत्तर प्रदेश की नई ताकत बनेगी। समारोह में प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाली 5 प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष यात्रा, अलख पांडे को शिक्षा उद्यमिता और स्वावलंबन, रश्मि आर्य को शिक्षा एवं नवाचार, डॉक्टर हरिओम पवार को साहित्य तथा डॉक्टर सुधांशु सिंह को कृषि क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान CM युवा के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले 5 जनपदों के जिलाधिकारी भी सम्मानित किए गए। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार गोरखपुर से प्रेम चंद्र गुप्ता।
So listeners, Kardola village in the Sambalpur district of Odisha is a thriving hub of Sambalpuri handloom weaving, showcasing traditional ICAT patterns and murals as well. It is a unique destination where visitors can experience live Sambalpuri sari production and witness this intricate craft. Let's find out more from our correspondent.
Kardola village is primarily inhabited by skilled weavers who have maintained the legacy of Sambalpuri Ikatsari for decades. Around 40% of the villagers are weavers. In 2021, with the support of the Odisha Lalit Kala Academy, 42 artists and weavers created 4,000 square feet of mural on village house wall, showcasing family-specific Ikat designs. Visitors can immerse themselves in rural life, traditional weaving practices and hand-painted walls that reflect the rich culture of Western Odisha. This year, the Art and Craft Village of Odisha is once again in the limelight for its efforts to be included in the state Silpogram program as a village of the Sambalpuri handicraft industry. The state tourism department has sanctioned more than 15 crore to develop Kardola village as a Silpogram. This initiative is part of the Hirakud master plan and the riverfront development project. Under this program, a craft center will be set up in the village where local weavers will receive training from expert. A shopping complex will also be developed for selling Sambalpuri textile. Tourists visiting Hirakud will be able to witness live weaving of Sambalpuri ikas at Kardola and purchase them directly from the weavers. Similar facilities will be developed at Singhabali village in the Athabira block of Bargarh district by the state tourism department under the Hirakud master plan project. For Parikrama, this is Alok Chandra Parik, Akashvani, Sambalpur.
दोस्तों छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले का बूझमाड़ इलाका जो एक समय में माओवादियों का गढ़ माना जाता था वहां प्रशासन ने हाफ मैराथन का आयोजन किया और इस मैराथन के जरिए इलाके में शांति सद्भाव और विकास का संदेश दिया गया और ब्यौरा दे रहे हैं रायपुर से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला।
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के अबूझमाड़ इलाके में 31 जनवरी को 21 किलोमीटर लंबी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। यह मैराथन नारायणपुर से शुरू होकर बासिंग में संपन्न हुई। इस मैराथन में छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के 10,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया। इनमें 60 से अधिक विदेशी प्रतिभागी भी शामिल थे। इस मैराथन की उल्लेखनीय बात यह रही कि इसमें बीते कुछ दिनों के दौरान हथियार छोड़कर समाज के मुख्य धारा में लौटे आत्मसमर्पित माओवादियों ने भी हिस्सा लिया। इस हाफ मैराथन का शुभारंभ करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इसके जरिए अबूझमाड़ की धरती से पूरे देश और दुनिया को अमन और शांति का संदेश दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मैराथन में भाग लेने के लिए युवा वर्ग ने जो उत्साह दिखाया है उससे स्पष्ट है कि नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा में बढ़ रहा यह क्षेत्र जल्द ही खुशियों से आबाद होगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
Depleting groundwater resources have emerged as a serious challenge across many parts of India, affecting drinking water security and sustainable development. So in this context, the international township of Oroville near Puducherry has initiated a pilot effort to explore alternative methods of drinking water generation and management. We have a detailed report.
Named AtmosBox, this standalone system based on German technology is expected to reduce Oroville's dependence on groundwater to a great extent. The system is a fully containerized unit powered by a 13 kilowatt solar panel and battery storage, allowing it to operate 24/7 independent of electrical grid. Each unit produces 500 liters of water daily. Beyond atmospheric water generation, the system can also filter up to 250 liters of water per hour from locally available water sources. Samuel, a technical lead from Germany, is overseeing the implementation of AtmosBox in Oroville. Oroville authorities informed that the project can integrate rainwater treatment and purification in the future, creating a more comprehensive water management model. Alongside the technical deployment, the initiative has also opened up opportunities for knowledge exchange and skill development for Oroville. During his visit, Samuel interacted with the members of STEMLAND, a science and technology learning center operating under Sri Aurobindo International Institute of Educational Research in Oroville. The center focuses on training rural youth in advanced areas such as electronics, artificial intelligence, and emerging technologies, linking environmental solutions with human capacity building. By experimenting with innovative technologies and involving local institutions, Oroville is attempting to demonstrate how community-led initiatives can contribute to addressing India's growing water challenges. For Parikrama, this is Bibinasnath, Akashwani News, Puducherry.
दोस्तों 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का शुभारंभ आज लॉस एंजलिस के crypto.com एरेना में हुआ। कॉमेडियन ट्रेवर नोआ ने छठी और आखिरी बार इस समारोह की मेजबानी की। सुनिए ये रिपोर्ट।
कैंड्रिक लैमर 9 नामांकनों के साथ सबसे आगे थे, जबकि लेडी गागा 7 नामांकनों के साथ उनके ठीक पीछे थी। समारोह में बैड बनी की जीत दर्ज हुई, जिन्होंने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ये पहली बार था जब ग्रैमी पुरस्कार किसी की पॉप कलाकार को मिला। संगीत फिल्म पुरस्कार मार्मिक वृत्तचित्र म्यूजिक बॉय जॉन विलियम्स को मिला, जिसका अर्थ है कि निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया है। वहीं तिब्बती गुरु दलाई लामा ने भी मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए श्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेटर और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का अपना पहला ग्रामी पुरस्कार जीता। यंग ब्लड ने ब्लैक सब्बात के गीत चेंजेस लाइव फ्रॉम विला पार्क के कवर के लिए रॉक परफॉर्मेंस श्रेणी में अपना पहला ग्रामी पुरस्कार जीता। हार्डकोर बैंड टर्नस्टाइल ने रॉक एल्बम और बाद में मेटल परफॉर्मेंस श्रेणी में अपना पहला ग्रामी पुरस्कार जीता। प्रायोगिक डांस पॉप कलाकार एफकेए ट्विग्स ने यूसिक्स वा एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक एल्बम श्रेणी में अपना पहला ग्रामी पुरस्कार जीता। विश्व दर्पण के लिए मैं वैष्णवी।
So now a very good news, Indian women sportspersons Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana and chess prodigy Divya Deshmukh are among the nominees for the 2025 BBC Indian Sportswoman of the Year 2025 awards. We have a report.
Captain Harmanpreet Kaur led India to its maiden ICC Women's World Cup title in 2025, playing a key role with match-winning performances. Vice-captain Smriti Mandhana continued her remarkable form. Chess star Divya Deshmukh created history by becoming the first Indian and youngest winner of the FIDE Women's World Cup, earning the Grandmaster title. Shooter Suruchi Singh impressed with multiple gold medals in ISSF World Cups and rose to world number one in the 10-meter air pistol category. Track athlete Jyothi Yaraji also made headlines after qualifying for the Olympics and winning gold in the Asian Athletics Championships. The nominees were selected by an eminent jury after evaluating performances during the year 2025. With Tapan Maharana's report, Shagun Chopra for Akashwani News, Delhi.
और दोस्तों आइए अब चलते हैं खेल के मैदान की तरफ और जानते हैं वहां की हलचल। एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आज से नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हो गया है शुभारंभ। चैंपियनशिप में 10 मीटर 25 मीटर और 50 मीटर राइफल और पिस्टल में पुरुष महिला जूनियर और युवा वर्गों में प्रतिस्पर्धाएं होंगी। प्रतियोगिताओं में व्यक्तिगत टीम और मिक्स टीम भी शामिल हैं और इस चैंपियनशिप में 17 देश हिस्सा ले रहे हैं।
Well, in some business news, benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty bounced back today. The Sensex jumped 944 points to close at 81,666, while the Nifty climbed 263 points to settle at 25,088. So for more updates about market activities, tune in to Akashwani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
और आइए अब याद करें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। दोस्तों,
वी रिमेम्बर फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया राजकुमारी अमृत कौर, हु वाज बोर्न ऑन द 2nd ऑफ फरवरी 1887। She completed her education at Oxford University, England and returned to India in 1918. She was immediately drawn towards the idea of nationalism as she interacted with leaders like Gopal Krishna Gokhale and Mahatma Gandhi. She shared an enduring and special friendship with Mahatma Gandhi. In her words,
"What drew me to Bapu was his desire to have women in his non-violent army and his faith in womankind. This was an irresistible appeal to a woman in a land where women were fit only for producing children and serving their lords as masters."
Initially, she involved herself in social reforms, particularly those related to women. Consequently, she waged a battle against the Parda system, the Devadasi system and child marriage. In 1927, she helped in the founding of the All India Women's Conference and later served as its president. In 1930, she was imprisoned for her participation in the Dandi March. She resigned as a member of the Advisory Board of Education to participate in the Quit India movement in 1942, for which she was imprisoned. In her battle for a free India, she became one of the few women members of the Constituent Assembly. She was also a member of the Subcommittee on Fundamental Rights.
She played an instrumental role in the establishment of the All India Institute of Medical Sciences. She also founded the Indian Council for Child Welfare. In 1950, she was elected the President of the World Health Assembly. Till her death, Rajkumari Amrit Kaur continued to work for the betterment of people. We salute the great freedom fighter.
We also remember Gandhian freedom fighter Vellalur Annaswamy Sundaram, who was born on the 2nd of February 1896 at Coimbatore. An associate of Mahatma Gandhi, he was also confidant of Madan Mohan Malviya and helped raise funds for the Banaras Hindu University.
Sundaram was inspired to join the freedom struggle when he heard Gandhiji in 1915. He instantly decided to give up his studies and started to follow Gandhiji as a disciple. Impressed by his fervor, Gandhiji took him along to Ahmedabad, where Sundaram became one of the first inmates of Gandhiji's newly founded Sabarmati Ashram. However, due to health issues, Sundaram left the ashram after 9 months.
Back in Coimbatore and Madras, Sundaram worked towards implementing Gandhiji's concept of village development, introducing weaving and spinning activities at Vellore. Sundaram built close and cordial relationships with leading independence activists of Tamil Nadu, namely C. Rajagopalachari, C. Vijayaraghavacharyar and Subramanya Iyer. Under their guidance and with Gandhiji's support, he was engaged in the Vaikom Satyagraha of 1925, the Salt Satyagraha of 1930, and the civil disobedience campaigns.
He was arrested in Madras in early 1931, prior to attending the second roundtable conference in London. Gandhiji sent Sundaram to Europe as an ambassador of his political message, where he travelled across many nations and met political leaders for the cause of Indian independence.
During his 30 years of service for the Banaras Hindu University, Sundaram published a range of books on the university and on its founder, Madan Mohan Malviya. A guiding theme through the life of Vellalur Annaswamy Sundaram was the concept of harmony and unity spreading beyond religious borders.
और दोस्तों आज है पुण्यतिथि अभिनेता रमेश देव की जो नाट्य मंच और सिनेमा के पर्दे पर भी अपनी प्रतिभा से हम सब लोगों को दर्शकों को लंबे समय तक उन्होंने बांधे रखा और आज ही वो दिन था 2 फरवरी 2022 में जब उन्होंने ले ली इस नश्वर संसार से विदा 190 उन्होंने मराठी फिल्मों में काम किया 30 मराठी नाटकों में अभिनय किया जिनकी 200 से ज्यादा प्रस्तुतियां हुई थी उनकी फीचर फिल्में टेलीविजन धारावाहिक और 250 से अधिक जो विज्ञापन फिल्में थी वो ऐसी थी जिनका निर्माण उन्होंने खुद किया था दोस्तों और 1951 में एक मराठी फिल्म पाटलाचीपुर में एक छोटी सी भूमिका के साथ उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद बहुत सी उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया जिनमें से खास जो याद आती हैं हमें वो हैं जोरू का गुलाम आपकी कसम प्रेमनगर अशांति गोरा मेहरबान 10 लाख रामपुर का लक्ष्मण फकीरा शत्रुघ्न सिन्हा की भूमिका वाली एक बड़ी यादगार फिल्म थी मेरे अपने और कई फिल्मों में भी उन्होंने काम किया शगुन जब हम बात करते हैं रमेश देव की तो कौन सी फिल्म है जो ऐसी कोई जो तुम्हें याद आती हो जिसका नाम लेना शायद मैं भूल गया हूँ
The film, I think, Munish, this is Anand. I have really loved watching the film. So good, so much, so many emotions that they, you know, display. Those emotions, they are really, you know, very.
बिल्कुल आपने मुझे याद दिलाया कि उसमें उन्होंने एक दोस्त का किरदार निभाया था. मुख्य भूमिका में थे उसमें राजेश खन्ना और उनके दोस्त का किरदार. तो चलिए सुनते हैं उसी से फिर एक संवाद भी और गीत.
मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने सपने सुरीले सपने कुछ हंसते कुछ गम के तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने ओ मैं
तेरे लिए ही सात रंग।
भाई सुमन तुझे परसों के लिए नेवता देने आई है।
नेवता? तब तो डबल सौभाग्य। कोई खास बात?
हाँ भाई, 3 साल पहले मैंने गलती की थी, उस गलती की सालगिरह मनाना चाहती है।
ओ, तेरी शादी की सालगिरह?
देखा कितना समझदार आदमी है, गलती कहते ही समझ गया।
गलती इनकी थी भास्कर भैया, फंस मैं गई।
आइए।
So, right, we are also remembering Khushwant Singh. Well, he wrote novels such as I Shall Not Hear the Nightingale and several essays and short stories too.
And so many other creations, like he was editor of famous magazine Illustrated India,
right.
And many other great works. So, Shrotao, ab dijiye hame ijazat. Hum lete hain aapse vida.
Namaskar. Namaskar.